जैसे ही न्यारा को पता चला कि निया ने शाम से कहकर उसकी सिफारिश करवाई थी, उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही, जैसे अपने ही विचारों से लड़ रही हो। फिर अचानक वो खड़ी हुई, उसकी आंखों में शिकायत भी थी। उसने निया की ओर देखते हुए कहा, दीदी, आपको मेरी नौकरी की तो बहुत पड़ी थी, मगर वो जो बेचारा आपके पीछे पीछे घूम रहा है, उसका आपको जरा भी अंदाज़ा नहीं है। वो आपको चाहता है। ऑफिस में भी इस बात की पूरी चर्चा है कि श्याम खन्ना वकील निया बेदी के पीछे है। आपको मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए था। न्यारा का गुस्सा सिर्फ नौकरी को लेकर नहीं था, शादी को लेकर भी था। क्या पता, अगर मैं डेस्टिनी में नहीं आती तो शायद मेरी शादी ज्ञान कपूर के साथ ना होती। कम से कम ऐसे फटाफट तो बिल्कुल नहीं। वो शादी को लेकर सोच रही थी। न्यारा की माँ, पापा और दादाजी तीनों चौंक गए। कौन लड़का है? दादाजी ने सख्त लहजे में पूछा। इसके पीछे पीछे कौन घूम रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, निया ने बात संभालने की कोशिश की। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मगर न्यारा कहाँ रुकने वाली थी? वही श्याम खन्ना, उसने तुरंत कहा। ज्ञान सर के पार्टनर, उन्हीं से कहकर मेरी नौकरी लगवाई गई। दीदी, श्याम आपको पसंद करते हैं, और मैंने सुना है, नहीं मैंने देखा है, ऑफिस में अक्सर आप दोनों की बातें होती रहती हैं। अब सबकी निगाहें निया पर टिक गई। क्या ये सच है? दादाजी ने गंभीर स्वर में पूछा। निया कुछ बोल पाती उससे पहले ज्ञान बीच में बोल पड़ा। हाँ, ये सच है, उसने साफ साफ कहा। इसीलिए तो न्यारा की नौकरी लगवाई थी। श्याम निया को इम्प्रेस करना चाहता था, मुझे खुद श्याम ने कहा था। फिर जैसे बात को हल्का करने के लिए तो मुस्कुराया। वैसे लड़का बहुत अच्छा है। दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में उम्र का अनुभव और परिवार की चिंता दोनों झलक रहे थे। अब छोटी की शादी हो चुकी है, उन्होंने कहा, तो बड़ी की भी तो होनी चाहिए। तलाक हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी उसी बात को पकड़कर बैठी रहो। हर इंसान गलत नहीं होता बेटा। निया चुपचाप सुनती रही। मगर दादाजी, उसने धीरे से कहा, मेरा उसके बारे में ऐसा कोई सोच नहीं है। वो उठकर दादाजी के पास जाकर बैठ गई, जैसे उनसे सहारा मांग रही हो। श्याम बहुत अच्छा लड़का है, ज्ञान के पिता अजय कपूर ने भी कहा, हमारे बेटे जैसा है। उसकी फैमिली विदेश में रहती है। हाँ हाँ, सुनीता कपूर ने हामी भरी, मैं श्याम को अच्छे से जानती हूँ। अब निया को लग रहा था जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही हो। वो सफाई देती जा रही थी और हालात उसे और गहराई में धकेलते जा रहे थे। वो खुद को सचमुच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तो ऐसा करो, निया के दादाजी ने ठोस स्वर में कहा, श्याम को भी बुला लो। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और मैं कहता हूँ, दादाजी ने बात आगे बढ़ाई, कि आज सब यहीं रुक जाओ। उन्होंने नरेश बेदी और अजय कपूर की ओर देखते हुए कहा, वैसे भी तुम लोग कॉलेज के दोस्त रहे हो, सुबह चले जाना कोई जल्दी नहीं है। फिर दादाजी की निगाह ज्ञान पर ठहर गई। और ज्ञान, उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम शाम से बात करो। अगर वो सचमुच निया से शादी करना चाहता है तो वो सीधे मुझसे आकर बात करे। जी दादाजी, ज्ञान ने सिर झुकाकर कहा। मगर निया अब और चुप नहीं रह सकी। वो बीच में बोल पड़ी, दादाजी, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई वादा कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है। नरेश बेदी ने शांत लेकिन निर्णायक आवाज़ में कहा, निया, अगर वो लड़का तुम्हारे काबिल होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा। निया ने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी अब भी बनी हुई थी। इसी बीच न्यारा का छोटा भाई, जो अब तक स्कूल में था, सीधे खेलने चला गया था। आज उसका लड़कों के साथ एक ज़रूरी मैच था। खेल में इतना डूब गया कि घर लौटते लौटते उसे देर हो गई। शाम ढल चुकी थी जब वो घर पहुंचा। अक्सर इस वक्त सभी लोग लॉन में बैठे होते थे, हंसी मजाक, चाय और बातचीत का दौर चलता रहता था। मगर आज बाहर अजीब सी खामोशी थी, लॉन बिल्कुल खाली पड़ा था। जैसे ही वो घर के अंदर आया, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। बिल्कुल सही बात है, सुनीता कपूर ने तुरंत समर्थन किया, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। बच्चों को सुबह लेकर जाएंगे, तभी तो उनका गृह प्रवेश होगा। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, अब रात को थोड़ी जाने का क्या मतलब। असल में सुनीता के मन में एक डर बैठा हुआ था। वो ज्ञान को अच्छी तरह जानती थी। एक बार हालात बनाकर उसकी शादी करवा दी गई थी, और अब वो नहीं चाहती थी कि कहीं वो वहां जाकर कोई हंगामा खड़ा कर दे। ज्ञान चुपचाप बैठा हुआ था, इतना शांत कि सुनीता को ये और भी बेचैन कर रहा था। वो जानती थी, जब ज्ञान इस तरह खामोश होता है तो भीतर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। नरेश बेदी ने अपनी पत्नी मंजू से कहा, मंजू, सबके कमरे तैयार करवा दो, अब सभी यहीं रुकेंगे, बेटी को हम सुबह विदा करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, अब रात को थोड़ी जाएगी बेटी घर से, सुबह जाकर हम आराम से शॉपिंग भी करवा देंगे। आखिरकार यही फैसला हुआ, आज की रात सब यहीं गुजरेगी। ज्ञान और न्यारा दोनों चुपचाप बैठे रहे, उनसे किसी ने राय तक नहीं पूछी। और जब पूछा ही नहीं गया तो बोलने का कोई फायदा भी नहीं था। हाँ, एक बात अलग थी, दादाजी ने सामने बैठे ज्ञान कपूर की ओर देखा। ज्ञान, उन्होंने सख्ती से कहा, तुम शाम को फोन करो और अगर जरूरत पड़े तो वो अभी की फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंच जाए। आएगा ना? ज्ञान ने बिना हिचक सिर हिलाया। आ जाएगा दादाजी, वो बोला। आजकल के लड़के लड़कियों के पीछे तो घूमते रहते हैं, मगर जिम्मेदारी लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कहते हुए दादाजी खड़े हो गए। ज्ञान कपूर ने तुरंत श्याम खन्ना को फोन लगाया। उसने सारी बात बताई, मगर बहुत सोच समझ कर। शादी की बात उसने जानबूझकर नहीं छेड़ी, बल्कि किसी और बहाने से श्याम को उसी रात बुला लिया। फोन रखते ही ज्ञान के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीर मुस्कान थी। आज की रात किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली थी। नकुल, दादाजी ने न्यारा के छोटे भाई से कहा, तुम जीजाजी को दीदी के कमरे में ले जाओ। फिर उन्होंने तुरंत बात स्पष्ट करते हुए जोड़ा। नकुल ने सिर हिलाया। निया और न्यारा, दादाजी ने आगे कहा, तुम मेरे साथ आओ। मंजू ने बिना कुछ कहे अजय और सुनीता को गेस्ट रूम की ओर भेज दिया। खुद वो रसोई की तरफ बढ़ गईं रात के खाने की तैयारी के लिए। घर में अब हर कोई अपने अपने हिस्से की भूमिका निभा रहा था, जैसे ये सब पहले से तय हो। ज्ञान कपूर फ्रेश होना चाहता था, वो नकुल के साथ आगे बढ़ा और न्यारा भी दादाजी के पीछे उनके कमरे की ओर चल दी। कॉरिडोर में चलते हुए एक पल के लिए ज्ञान और न्यारा दोनों ठिठक गए। अनजाने में ही दोनों ने पलटकर एक दूसरे की ओर देखा। ना कोई शिकायत थी उस नजर में, ना कोई गुस्सा, बस एक अजीब सी चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। उस एक नजर में पुराने सवाल भी थे और नए जवाब भी। दोनों को एक साथ एहसास हुआ, उनका रिश्ता सचमुच बदल चुका था और ये बदलाव अब किसी के कहने या ना कहने से रुकने वाला नहीं था। असल में फैजान ने सुबह कॉल किया था कि नूर अपनी फूफी के घर जा रही है, मगर सादिया ने फोन नहीं उठाया था। वो तो सुबह की बात थी, फैजान ने कहा। मैं बाहर थी ना, इसीलिए अब पूछ रही हूँ, सादिया बोली। मेरे सिर में दर्द था, फैजान ने यूं ही कह दिया। गोली पूछनी थी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सिर दर्द में कौन सी गोली ली जाती है, सादिया ने झुंझलाकर कहा। गोली तो तुम्हें मुलाजिमा भी दे देता, उसे भी पता है। फैजान, तुम और अरमान एक ही उम्र के हो, एक साथ पले बढ़े हो। वो देखो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है और तुम एक सिरदर्द की गोली तक खुद नहीं ले सकते, इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारा। उसकी आवाज में साफ नफरत थी। देखो ना, फैजान ने तंज किया, तुम तो मुझे सिरदर्द की गोली भी नहीं दे सकती, मगर माहिरा अपने भाई के लिए अपनी पसंद से खाना तक बनवाती है। मैं माहिरा नहीं हूँ, सादिया झुंझला कर बोली। और मैं अरमान नहीं हूँ, फैजान ने जवाब दिया। तुम मुझसे बिजनेस एस्टैब्लिश करने की उम्मीद मत रखो। ये कहकर फैजान वहां से चला गया। पीछे सादिया खड़ी रह गई, गुस्से से भरी हुई, अंदर ही अंदर सुलगती हुई।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।